أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، لا حول ولا قوة إلا بالله. دل کی گہرائی سے کریے اللہ کا شکر. الحمد لله على نعمت القرآن، الحمد لله على نعمت الهدایہ. اللہ سے دعا کر کے شروع کرتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. دورہ قرآن 2024 DQ 2024، اور آج اس میں سے ہم کریں گے پارہ نمبر 9، قال الملأ. پچھلے پارے کو تھوڑا سا ساتھ ملا لیں تو اس میں ہم نے سورۃ الانعام 111 سے 165 تک کی تھی، اور پھر سورۃ الاعراف کی 87 آیات کی تھی. ان کا پیغام کیا تھا؟ سورۃ الانعام میں تو خاص طور پہ حلال اور حرام کی بات تھی، اور مشرکین مکہ کی بدعت تھی. اور پھر سورۃ کے بالکل آخر میں قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اس پکار کو ہم نے اپنے کانوں پہ سنا، جس کا خلاصہ کیا تھا کہ دین تمہیں نماز روزے کے ساتھ ساتھ جینا مرنا بھی سکھاتا ہے. تمہارے جینے کے طریقے، تمہارے مرنے کے طریقے اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی رہنمائی میں ہوں. اسی لیے اس پورے پارے میں جو موضوع تھا ہمارا، وہ اسی پیغام پہ صورت میں پورا ہوتا دکھا. پھر اس کے بعد صورت الاعراف جب شروع ہوتی ہے، قرآن کا بھی پیغام تھا اور اللہ کی نعمتیں احسان، اور شروع میں ہی آدم اور ابلیس کے قصے سے ہمیں شجر ممنوعہ کے ذریعے آزمائش کا بتا دیا کہ آدم کے لیے تو بس ایک چیز حرام تھی، تمہارے لیے چار ہیں. اب وہ اس ایک سے اگر نہ رک سکے تو جنت سے دنیا کا سفر شروع ہوا. کہیں ایسا نہ ہو کہ حرام کھانے یا حرام دیکھنے یا حرام سننے، جس کو فحش کہتے ہیں، اس کی وجہ سے تم اپنی دنیا بھی خراب کرو اور اپنی آخرت بھی. آج ہم انشاءاللہ اس نویں پارے میں سب سے پہلے تو یا ایھا الذین آمنو کی پکاریں سنیں گے. پارہ نمبر 9 میں 5 آیات ہمیں یا ایھا الذین آمنو سے شروع ہوتی ہوئی دکھیں گی، 15 20 24 27 اور 29، 15 20 24 27 اینڈ 29. دعا کر لیجئے کسی ایک ہی پکار پہ میرا دل کھل جائے. ہم سب کو اپنے دلوں کے کھلنے کی فکر بھی کرنی ہے اور دعا بھی کرنی ہے، اور جتنا زیادہ ہم اس کے اوپر اپنے آپ کو لیتے رہیں گے، اللہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے. علم کی محفلوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، مانگ لیجئے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پچھلے پارے میں ہم نے شرح صدر کی باتیں بھی دیکھی تھی، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ میرا سینہ کھول دے، میرے لیے بتانا اور آپ کے لیے سن کے ماننا اور قبول کرنا آسان کرے. اسی پارے میں وہ آیت بھی آ رہی ہے کہ جس میں اللہ براہ راست کہتے ہیں کہ استجیب للہ وللرسول اذا دعاکم، تو اے اللہ، جب میری زندگی میں نیکی کا کوئی موقع تو لے کر آئے، تو مجھے اپنی عقل کے حوالے نہ کرنا، مجھے اپنے حالات اور اسباب کے حوالے نہ کرنا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا. آج کا پارہ کیا ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں؟ بس یہی کہہ سکتی ہوں کہ میں نہیں بتا سکتی. وما توفیق الا باللہ، جو اللہ چاہے گا اتنا ہی بتا سکوں گی، اور وہ ہے حق اور باطل کی کشمکش. پورا پارہ، پارے کے بالکل شروع میں آپ قوم شعیب کا حضرت شعیب کے ساتھ جھگڑنا، وہ بھی حق اور باطل کا جھگڑنا تھا، اور اسی طرح پھر اس کے بعد طویل قصہ حضرت موسیٰ اور فرعون کا ہے. دور چاہے ابراہیم کا ہو، اسماعیل کا ہو، وہ موسیٰ عیسیٰ کا ہو، یا آج کا ہو، یا محمد عربی کا دور ہو، ہر دور میں جنگ لڑائی حق اور باطل کی تھی. اور اس کا نقطۂ آغاز تو آدم اور ابلیس کے قصے سے ہی ہو گیا. اس نے وہیں دعوے کر لیے تھے کہ میں تو ان کو ضرور بہکاؤں گا، تو لہٰذا آج حق اور باطل ہے. پوری سورۃ الاعراف کا جو آخری حصہ ہم پڑھیں گے، اس میں قوموں کی ایک کے بعد ایک تباہی اور رسولوں کے ساتھ منہ زوری کرنا، یہ حق اور باطل تھا. یاد رکھیے، حق والے کو سب اچھا نہیں کہتے، حق پہ تھوڑے ہوتے ہیں. حق لوگوں کو کڑوا لگتا ہے، الحق مرہ حدیث میں بھی آتا ہے. तो लिहाजा अगर आप कुरान पढ़कर किसी एक बात को हक समझते हुए उसके ऊपर अमल करने लगेंगे तो अपने आंसू खुद पोंछ लीजिएगा। अगर रोना है धोना है तो वो यहीं से पलट जाए जिसे जहाँ हो प्यारी। ये वो सफ़र है कि जिसके अंदर अल्लाह ताला की मदद ज़रूर आती है। तो लिखिए, नसरु मिनल्लाह व फतहुन करीब। आज हर नबी की कौम के आखिर में बचने, चाहे पिछले पारे के साथ जोड़ लें तो कौम नूह में से सिर्फ 60-70 बचे, कौम समूद में से जो थोड़े से बचे उसी से कौम आद शुरू हुई। एक कौम, एक नबी के बचे हुए लोग कुछ अरसे के बाद वो भी बिगड़ने लगते थे। लिहाजा हम देखेंगे कि मूसा और फिरौन के किस्से में नसरु मिनल्लाह व फतहुन करीब का हकदार कौन था? मूसा अलैहिस्सलाम थे, फिरौन नहीं था। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम के पास असबाब नहीं थे। फिरौन और जादूगरों का आज किस्सा हम पढ़ने वाले हैं तो मुझे है हुक्मे अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। आज के इस पारे की जो शख्सियत हम देखेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह समझ आने के बाद जो शख्सियत सामने आती है और फिर ईमान की वो ताकत सामने आ जाती है कि जिसके बारे में आप यही कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा एक इंसान अपने आप को अल्लाह ताला के हुक्मों के साथ दिखता है उतना उसको ये समझ आ जाता है कि मेरा रब अल्लाह है। तो आज की ईमान की ताकत फिरौन के जादूगरों से लेकर हर दौर के जो लोग थे, हम उसमें से इंशाल्लाह मिसालें ढूंढते रहेंगे। लेकिन ये ईमान की ताकत क्या होती है, ये बंदे को क्या बना देती है? ना लोगों को समझ आता है, ना उनकी अक्ल में आता है। वो हर वक्त यही सोचते रहते हैं क्या मसला है। कभी आप देखते हैं कि कोई दूर से चल के आ जाता है, करीब की नेकी को छोड़कर दूर की नेकी को अपना लेता है, और कुछ लोग सिर्फ अपने कंफर्ट जोन में होने की वजह से बिस्तर से उठकर कंप्यूटर तक नहीं आते। बाद में सुन लेंगे, अच्छा अभी नहीं, अच्छा घर से सुन लेंगे, फिर घर से सुना था नहीं उस वक्त ये मसला आ गया था, बाद में सुन लेंगे, रिकॉर्डिंग तो आ गई। तो लिखिए कि ईमान की मजबूती कैसे आती है, तौबा के साथ, पिछली जिंदगी के गुनाहों पे माफी और आइंदा नेकी करने का शौक बंदे को ताकतवर बना देता। हम कुरान में इधर भी किस्सा पढ़ने लगे हैं और आगे सूरत तौहा में भी पढ़ेंगे। अभी से ही बता देती हूँ कि जादूगर जब फिरौन के पास जमा हुए तो उन्होंने फिरौन से कहा कि अगर हम मूसा के मुकाबले पे गालिब आ गए तो हमको कुछ इनाम तो मिलेगा ना। नज़र किस पे थी? माल पे। इस 1 घंटे में कितना कमा लूंगी मैं, इस 1 घंटे का क्या पालूं? आज दुनिया ने इस चीज को इतना ज्यादा समझ लिया कि शायद नमाज भी पूरी ठीक ना आती हो, लेकिन पैसा हमें और चाहिए। अकीदे में कई सांप बिच्छू होंगे जो क्यामत के दिन तो छोड़िए कब्र में जाते ही नजर आने शुरू होंगे, लेकिन वक्त ही नहीं है। तजवीद में हराम गलतियां होंगी लेकिन वक्त ही नहीं है। ग्रामर तो छोड़ दीजिए, तर्जुमा नहीं आता। लेकिन हकीकत है कि मूसा के जादूगर दुनिया परस्त थे, पैसे पे नजर थी, कुफर भी था, शिर्क भी था और जादू भी था। फिरौन ने कहा क्यों नहीं दूंगा, और जादूगरों ने जब रस्सियां और लाठियां फेंकी जो देखने वालों को रींगते हुए सांप दिखे। नतीजा क्या हुआ कि जादूगरों की लाठियां सांपों की शक्ल में चारों तरफ थी। लिखिए, आज भी हक और बातिल की इस जंग में चारों तरफ शर की लाठियां बिखरी हुई हैं। चाहे आप उसको जिन्स परस्ती का नाम दे दें, शिर्क और कुफर का दे दें, बेहयाई और बेगैरती का नाम दे दीजिए, असल में ये रस्सियां हैं। ये कौन सी रस्सियां हैं? ये जो हमें बहुत बड़ी भी लिखती हैं। लेकिन लिखिए, आज इंसानियत को उस हक वाले की तलाश है, इंतजार है कि जिसके हाथ में आया हुआ असाबी सांप बन जाए, हक का सांप। लिखिए, ये मेरे दिल की जुमले हैं। और वो क्या है कि आज चारों तरफ जितना फसाद है, शर है, जो आपको मुझे इर्द गिर्द दिखता है, कहीं हमारी बच्चों के ईमान का खतरा है, कहीं हमारी ये बेटियों की इज्जतों पे हमले हैं, ये सब सिर्फ फिरौन के उस जादू और सहर से लोगों की आंखों पे जो बांधे हुए हैं वो है। असल में ये सब रस्सियां हैं। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम का एक सांप मैदान में आया तो सबको निगल गया। आज इस वक्त उम्मते मुस्लिमा और आज हमारे मुसलमान मर्दों और हम खवातीन जो कमज़ोर सी इस वक्त अपनी इसलाह की खातिर बैठी हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं? मैं आपके सामने बैठी हूँ, मैं क्या कह सकती हूँ आपको? और अगर मैं आपको कुछ बहुत बड़ी बड़ी बातें भी कह दूँ कि जाएं दुनिया का वो मुल्क ठीक करके आएं, जाएं ज़रा उधर खाक का बोलबाला करके आएं, आप ये करें तो इसका नतीजा क्या होगा सबको पता। मुझे तो अपने हिस्से का काम करना है। मेरा सब्जेक्ट ही ये है कि मैं आपको वो मौजू दे दूं कि जो अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा को दिया। आज हम पढ़ने वाले आयत वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। अल्लाह कहता है कि ईमान की ताकत आती है तो एक छोटा सा हाथ भी इतना मजबूत हो जाता है कि उसके हाथ में रखी हुई छोटी छोटी कंकरियां और वो पत्थर वो बुलेट बन जाते हैं। आज हमने अपने ऐसी नस्लें पैदा करनी है, हमने ऐसे बच्चे बनाने, अपने अपने आप को ईमान के उस लेवल पे रखना है कि हमारी कोखों से और हमारी गोदों से अल्लाह ताला मूसा जैसे लोग पैदा करें कि जिसके हाथ में असा था और वो अजदहा बन गया, और जो ही वो अजदहा जब सांप गया तो हर लकड़ी और हर रस्सी फिर रस्सी रह बन गई। आज जिस दुनिया में मैं और आप हक और बातिल की जंग ले रहे हैं, इसमें रोने धोने से कुछ नहीं होना, और अफसोस करने से, हसरतों से कुछ नहीं होना, और ताने देने से भी कुछ नहीं होना। आज के दौर में जो हक के लिए खड़ा है ना, अल्लाह की मदद उसके साथ है। मैं कुरान पढ़ने की बात नहीं कर रही, मैं नफिल पढ़ने की बात नहीं कर रही, रोजे की बात नहीं कर रही, ये तो ला मुहाला, ये तो हमारे फ़राइज़ हैं, इसमें से तो किसी को मफर नहीं, कल जाते ही सवाल जवाब शुरू हो जाएंगे। मैं बात कर रही हूँ कि इस वक्त दुनिया में जितना आपको गंद दिखता है, जो खराबियाँ दिखती हैं, आप जितना गंदगी और खराबी के करीब आते जाते हैं, आपको ताफुन आता है, आपको बू आती है, आपको स्मेल आती है। लोग दुनिया के जिन किनारों से दूर से देखकर जिन जगहों पे जाने के ख्वाब देखते हैं, कभी आप अंदर के उनके हालात देखिए तो आपको वो सब सांप दिखेंगे। आज ज़रूरत है हक और बातिल की इस जंग में अपने आप को हक वालों की उस छोटी सी कश्ती में सवार कर लीजिए, चाहे वो जिसको कुरान ने सूरत नजम में बड़े प्यार से कहा, वो तो कीलों कांटों वाली थी, लकड़ियां जोड़ जोड़ कर बनाई हुई हजरत नूह की कश्ती बच गई। और इसी तरह हर दौर में नबी के साथ हक होता था और उसके जो अपोजिट लोग होते थे उनके साथ बातिल होता था। ये सदी कुरान के इल्म काम करने की सदी है, तरबियत तज़किया और इसी तरह से अपनी ज़ाती इस्लाह के बाद जब वो किरदार बनेंगे जो सहाबा के बने थे। अल्लाह के नबी ने एकदम हाथों में हथियार नहीं दिए थे, 13 साल मक्का का दौर जब आया, ये सारी बातें आप आज सूरह अनफाल में पढ़ने वाले हैं, 13 साल तक कुफ वई दी यकुम तरबियत हो रही थी, तस्किया हो रहा था, कुरान की आयतें उतरती थी दिन रात, रोते थे, उनको अपना आप हल्का दिखता था। फिर वलकाज़मीन अलगैज़, सूरत आल इमरान में आप पढ़ के आए, गुस्से पे काबू पाना सिखाया, अमीर की बात सुनना सिखाई, हुदैबिया के मुकाम से वापस बुला लिया कि चलो वापस, अमीर ने कह दिया कि उमरा नहीं होना तो नहीं होना, 1400 में से कोई एक भी जाकर छुपके कर आता पता भी नहीं था चलना, जाती इबादत ही, हम तो जाकर वहां नकली उम्रे भी करते हैं ना, कुछ नहीं करना, वापस आ गए, क्योंकि उस दिन सहाबा ने ये दिखा दिया कि इतात का अजर इबादत के अजर से ज्यादा है, क्योंकि इबलीस आबिद था, मुती नहीं बना, अल्लाह के आगे सजदा करता था लेकिन अल्लाह के हुक्म को सजदा नहीं कर सका। तो आज इस पे तो जितनी बातें मेरे दिल से निकलवा लें, मेरे आपके लिए जो आज का पैगाम है, वो कौन सी ताकत थी जिसने लालची, दुनियादार, शिर्क पे और जादू पे होने वाले लोगों को फिरौन के आगे खड़ा कर दिया? ईमान की ताकत। आज भी यही होगा, बस थोड़ा इंतज़ार तो कीजिए, ये लकड़ियाँ लकड़ियाँ बन जाएंगी, ये रस्सियाँ रस्सियाँ बन जाएंगी। जैसे जादूगर समझ गए थे ना कि मूसा ने जो चीज़ दिखाई है वो जादू नहीं है, ये अल्लाह का मौजज़ा है, आज भी जो कुरान सुनता है उसका दिल गवाही देता है ये कुरान है, ये किसी की बातें नहीं है, कुरान कुरान है। इस रोज़ सुन रहे हैं तो आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा? और फिर उनका सीना हक के लिए खुल गया और उन्होंने ईमान कबूल किया। फिरौन गुस्से में आ गया, तुम लोग क्या मूसा की बात मान रहे हो इससे पहले कि मैं तुम्हें इजाज़त दूँ? क्यों भाई, ये आपके घर की कोई चीज़ है जिस पे इजाज़त चाहिए? हाँ, ये तो तुम्हारी खुफिया साजिश है, ये सब पढ़ेंगे आज अभी हम। चलो मैं तुम्हारे हाथ इधर से उधर से कटवा देता हूँ, तुम्हारे पाँव कटवाता हूँ, सूलियों पर चढ़ाऊंगा। उस वक्त जादूगरों ने कहा था कि उस जात की कसम जिसने हमको पैदा किया है, अब हम अल्लाह की निशानी देखकर फिर तुम्हें नहीं मानते, कल तक तो मंदों में काने राजे थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह आंखों वाला हमारे सामने है, हमने मूसा के हाथ से मान लिया और उसी वक्त करना तो कर लो, तुम हमारी जिंदगी खत्म कर लोगे, कोई इशू नहीं, अल्लाह बहुत ही अच्छा है और हम तो वैसे भी अब उसके पास जाने वाले हैं। सूरह तौहा में आयतें आएंगी तो यहाँ चंद जुमले लिख लीजिए और दिल की तख्ती पे इनको महसूस कीजिएगा। और वो क्या है कि वही जादूगर जो अभी फिरौन के सामने खुशामदी थे, लालची थे, इनाम और एजाज के तालिब थे, थोड़ी ही देर में इतने दलेर और बहादुर कैसे हो गए? कि उनको ना फिरौन की परवाह रही, ना फिरौन की तरफ से मिलने वाली मुराद का कोई लालच रहा, और ना फिरौन अब जो उनके साथ करेगा, टॉर्चर देगा। आज हम रोते हैं, कुछ कह दिया तो कोई हमें पकड़ के ले जाएगा, कुछ कर दिया तो ये कर देंगे, कोई खौफ नहीं आया। वो क्या चीज़ थी जिसने जादूगरों को अचानक पस्तियों से बुलंदी और बुजदिली से बहादुरी तक पहुंचा दिया? तो वो ईमान की ताकत थी। उन्होंने इंसानों से गुजर कर अल्लाह को पा लिया, फिर इनको इंसानों का डर भी क्यों हो। तो ये ईमान की ताकत आपको मुझे अपने सामने रखते हुए इन चीज़ों को आज समझने की कोशिश करनी है। अल्लाह करे कि हम आज के इस पारे के बाद कम से कम इतना कोई ईमान तो अपने दिलों में महसूस कर सकें कि हम कह सकें कि ऐ मालिक, हम तो तेरे सामने आकर बैठ गए, तो हमारी मदद फरमा। चलिए अब शुरू करेंगे तर्जमे के साथ सूरत अल अराफ की आयत नंबर 88 से 206 तक, यानी सूरत के एंड तक चलेगा, और उसके बाद फिर इस बारे में सूरत अनफाल शुरू होगी। वहाँ भी कुछ बातें होंगी जो असल में आज के पूरे पारे को कह लीजिए कि मगज ब्रेन है इस पूरे पारे में, इस बात का कि परवाह ना करो फतह हुई के शिकस्त। इस्लाम नहीं मानता, मुसलमान न फतह के लिए घर से निकलता है ना शिकस्त का, नहीं, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई, शहादत है मतलूब व मकसूद है मोमिन। आज जो बच्चे शहीद हो रहे हैं, आज वो माएँ जो अपने शहीद बच्चों की लाशें अपनी गोदों में लेती हैं, आप उनको नाकाम समझते हैं? आप समझते हैं वो ना समझ है? नहीं, वो कामयाब हो गए, आज हम नाकाम हैं। कैसे, आइए देखते हैं। ये सारे दौलत परस्त तबके का किस्सा है, कौम शुएब का किस्सा पीछे से शुरू हुआ था, यहाँ पे अब उसका ततिमा है। आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, रुकू नंबर 11, 88 से 93। टॉपिक है हर दौर के दुनियादारों की गुमराही। क़ालल मलउल्लज़ीन इस्तकबरू मिन क़ौमिही लनुख़रिजन्नक या शुएब, इनकी कौम के मुतकब्बिर सरदारों ने कहा कि शुएब, हम आपको और आपके जो हमराह ईमान वाले हैं इनको अपनी बस्ती से निकाल देंगे। नोट कर लीजिए, धमकियों पे धमकियाँ, यानी वो ये धमकी देकर कि तुम यहाँ रहकर या तो फिर हमारी जूतियाँ चाटो तो या फिर हम तुम्हें निकाल देंगे। अब ये धमकियाँ आज के दौर में किसी को मिले तो उसका रिएक्शन, उसका रिस्पॉन्स और उसकी क्या फीलिंग होती है, और ज़रा सा हज़रत शुएब का जवाब सुन लीजिए। क्या कहा, हम आपको और जो आपके हमराह ईमान वाले हैं इनको बस्ती से निकाल देंगे, इल्ला ये कि तुम हमारे मजहब में आ जाओ वापस। शुएब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि क्या हम तुम्हारे मजहब में आ जाएं, गो हम इसको मकरूह ही जानते हों। ये थी हमारी कल की लास्ट ईमान की शाख, के हक के ऊपर आने के बाद कुफर की तरफ जाना बंदे को ऐसे लगता है कि जैसे जलता हुआ अंगारा हाथ में रखना। दुआ कीजिए अल्लाह हमारे मुसलमान बच्चों को, हमारी नस्लों को ईमान पे रखे, उनको इस्लाम सारी चीज़ों से ज़्यादा प्यारा हो जाए, और ऐसा ना हो कि वो हक़ को छोड़ने पे तैयार हो जाएं और कुफर को मानने पे तैयार हो जाएं। और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, हम तो फिर अल्लाह पर बड़ी तोहमत लगाने वाले हो जाएंगे। अगर हम तुम्हारे दीन में आ जाएंगे इसके बाद कि अल्लाह ने हमको इससे निजात दे दी, और हम मुमकिन नहीं कि तुम्हारे मज़हब में फिर आ जाएं, लेकिन हाँ ये कि अल्लाह ही ने जो हमारा मालिक है मुकद्दर किया हो, हमारे रब का इल्म हर चीज़ को मुहीत है, हम अल्लाह ही पर भरोसा रखते हैं। ऐ हमारे परवरदिगार, हमारे और हमारी कौम के दरमियान हक के मुताबिक फैसला फरमा, और तू सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। और इनकी कौम के काफिर सरदारों ने कहा, अगर तुम शुएब अलैहिस्सलाम की राह पर चलोगे तो बेशक बड़ा ही नुकसान उठाओगे, बस इनको जलजले ने आ पकड़ा, बस वो अपने घरों के अंदर ओंधे के ओंधे पड़े रह गए। ये है नसरु मिनल्लाहि व फतहुन करीब, और ये है हक और बातिल की जंग में अल्लाह का हक वालों का साथ देना और बातिल वालों को छोड़ देना। बातिल के साथ अल्लाह ताला का हमेशा ये मामला होता है। और हुआ क्या, वो लोग जिन्होंने शुएब अलैहिस्सलाम की तकजीब की थी, इनकी ये हालत हो गई जैसे कि वो इन घरों में कभी रहते ही ना थे। ज़रा सा तसव्वुर में लाइए, अल्लाह का सिर्फ एक कुन होगा, और मस्जिदों को वीरान करने वाले, बच्चों को ज़िबा करने वाले, और इसी तरह से अपने हिसाब से मुसलमानों को ख़त्म करने वाले लोग इस अल्लाह ताला की सुन्नत के मुताबिक नीस्त तो नाबूद हो जाएंगे, गोया कि वो बसते ही ना थे। जिन्होंने शुएब की तकजीब की वही हसारे में पड़ गए। इस वक्त शुएब अलैहिस्सलाम इनसे मुंह मोड़ कर चले गए और फरमाने लगे, ऐ मेरी कौम के लोगो, मैंने तुमको अपने परवरदिगार के अहकाम पहुँचा दिए थे और मैंने तो तुम्हारी खैर ख्वाही की थी, फिर मैं इन काफिर लोगों पर क्यों रंज करूँ। एक एक लफ्ज़ बता रहा है कि रंज कर रहे हैं। जब बंदे का दिल जलता है ना तो पता चलता है, जिस बंदे के अंदर दर्द होगा ना उसका दर्द उसके लफ्ज़ों से दिखेगा। चूल्हा जल रहा है, पतीली गर्म है, हाथ लगाएंगे तो हाथ जलेगा। ठंडे चूल्हे पे जितनी मर्जी देगचियां रख रखा दीजिए, कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ आपको ये बात समझ में आ गई कि जब लोग हक का साथ देते हैं तो उनको कितना ज़्यादा इस बात का यकीन होता है कि अल्लाह ताला हमारे साथ होगा। आप देखिए कि ये यकीन अगर आज उम्मत मुस्लिमा में है, इस सदी में जिससे आप और मैं आज गुजरें, तो फिक्र ना कीजिए, ज़्यादा गम ना करें, काम कीजिए, अल्लाह की मदद को लाने वाले मामलात कीजिए, ईमान के तकाज़ों को पूरा करें। और ईमान के बारे में आज एक आयत अभी गुजरी, आयत 88, टॉपिक क्या है? मुतकब्बिर लोगों को दीनदारों की बात अच्छी नहीं लगती, और इट्स ट्रू, क्योंकि उनको अपने कई मामलात छोड़ने पड़ते हैं। फेथ इन एक्शन तकब्बुर बर्बादी का सबब है, अपने अमल का जायज़ा लेना है हमने। लोगों के नाराज़ होने की परवाह किए बगैर हक को बयान करना है। अल्लाह हमें लोगों के खौफ से बेखौफ कर दे। आज ये भी दुआ कीजिए, बहुत सारे लोग दूसरों के खौफ की वजह से हक को हक और बातिल को बातिल नहीं कहते। और आज पूरे वक्त में वो दुआ ज़हन में रखी है जो अबू बकर सिद्दीक की तरफ मंसूब है, अल्लाह मारी नल हक का हक कम वर जुक न इतवा हो वरी नल बात इला बात इलन वर जुक न इजतना बहू। आमीन। अगले रुकू पे चलते हैं, रुकू नंबर 12, 94 से 99। इस्तिदराज को ग्रेजुअलिटी, थोड़ा थोड़ा करके पकड़ना, इस्तिदराज को अल्लाह की रहमत समझने की गलती। पीछे हमने सूरत अल-अनाम में ये मौजू देख लिया था कि अल्लाह ताला ने कैसे कौमों के साथ एक अपना मामला रखा हुआ है, और वो क्या है कि जब कौमें गाफिल हो जाती हैं तो अल्लाह ताला उनको फिर गफलत से निकालने के लिए पहले दुनिया की दौलत देता है, खूब उनके अंदर मस्ती आने लगती है, और जब वो खूब फलने फूलने लगते हैं तो अल्लाह ताला फिर उनको पकड़ता है। इस कैफियत को इस्तिदराज कहते हैं। 94 से 99, आइए देखते हैं इसमें हमारे लिए क्या है। वमा अरसलना फी क़रयतिन मिन नबीश, और हमने किसी बस्ती में कोई नबी नहीं भेजा कि वहाँ के रहने वालों को हमने सख्ती और तकलीफ में ना पकड़ा हो। क्यों किया? ताकि वो गिड़गड़ाएं, लिख लीजिएगा इसको, ताकि वो गिड़गड़ाएं। या एक जुमला बोल दूँ, इब्तदा में सज़ा तादीबन आती है अदब सिखाने के लिए, बाद में वही ताजीबन आती है। अब दो लफ्ज़ मुश्किल मैंने जान के बोले हैं ताकि अगर कोई सो रहा है तो उठ जाए। तादीब अदब से, अल्लाह ताला यहाँ इस आयत में वो बता रहे हैं अदब सिखाने के लिए। जैसे आप अपने बच्चे को डांटते हैं, देखो मेहमान आ रहे हैं, ऐसा ना करना, वैसा ना करना, शुरू में छोटी छोटी डांट होती है, लेकिन अगर वो मस्ती करे तो फिर जो मेहमानों के जाने के बाद आप करते हैं वो तहजीब होती है। यहाँ इस आयत में तादीब की बात है, अदब सिखाने के लिए, ताकि वो अपने आप को दुरुस्त कर लें। अब अगली आयत में, फिर हमने इस बदहाली की जगह खुशहाली बदल दी, यहाँ तक कि इनको खूब तरक्की हुई और कहने लगे कि हमारे आबाओ अजदाद को भी तंगी और राहत पेश आई थी, तो हमने इनको अचानक पकड़ लिया और इनको खबर भी ना हुई। और अगर इन बस्तियों के रहने वाले ईमान ले आते, ज़रा से इसको दर्द से महसूस कर, आप सब अपने अपनी बस्ती को सोचें, अपना शहर, अपना मुल्क, टाउन, मोहल्ला, अल्लाह की ये सुन्नत है, जिस इलाके में जिस जगह में ये मामला हो जाए तो अल्लाह के वादे भी सुन लीजिए। और अगर इन बस्तियों के रहने वाले ईमान ले आते और परहेजगारी इख्तियार करते तो हम इन पर आसमान और ज़मीन की बरकतें खोल देते। ये आपकी महंगाई का इलाज, ये है इन्फ्लेशन का इलाज, ये है पूरी दुनिया में इस वक्त जो अजीबोगरीब सी कैफियत पैदा हो चुकी है उसका इलाज। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने आप को देखें कि हम इधर कहाँ खड़े हैं। तो लिहाजा अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने उनके ऊपर वादे तो ये किए थे लेकिन उन्होंने तकजीब की, और हमने इनके अमाल की वजह से इनको पकड़ लिया। क्या फिर भी इन बस्तियों के रहने वाले इस बात से बेफिक्र हो गए कि इन पर हमारा अजाब शब के वक्त आ पड़े जिस वक्त वो सोते हों? और क्या इन बस्तियों के रहने वाले इस बात से बेफिक्र हो गए कि इनके ऊपर हमारा अजाब दिन चढ़े आ पड़े जिस वक्त के वो अपने खेलों में मशगूल हों? यानी अल्लाह की पकड़ के लिए वक्त की कैद नहीं, किसी वक्त कभी कहीं भी ये पकड़ आ सकती है। क्या पता चला अपने दिन के प्रोग्राम्स, रात की नशरियात, सुबह शाम जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर अल्लाह की पकड़ से बेखौफ न रहना। और आप देखिए कि अल्लाह का ये वादा कितना सच्चा है। कि पकड़ हमेशा रातों में आती है अमूमन, अर्ली मॉर्निंग, फजर के बिल्कुल करीब आप देखें तो अक्सर जो भी क्लेमिटीज आती हैं या आसमानी आफात, जलजला वगैरह, वो अक्सर बिल्कुल सुबह में आता है, यानी गफलत का वक्त, जब लंबी तान के सो रहे होते हैं, क्योंकि सारी रात तो न जाने कहाँ पड़े थे, क्या कर सुन रहे थे, क्या देख रहे थे। तो फरमाया, और क्या इन बस्तियों के रहने वाले इस बात से बेफिक्र हो गए हैं कि इन पर हमारा अजाब दिन चढ़े आ पड़े, जिस वक्त के ये अपने खेलों में मशगूल हों? क्या बस वो अल्लाह की इस पकड़ से बेफिक्र हो गए? बस अल्लाह की पकड़ से सिवाय इनके, जिनकी शामत ही आ गई हो, कोई बेफिक्र नहीं होता। दुआ कीजिए अल्लाह हमें बेफिक्रे होने से बचा ले। जो होगा देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? देख नहीं रहे आंखों से? आज हक और बातिल की इस जंग में जिस तरीके से अल्लाह ने दुनिया को दिखा दिया है कि उम्मते मुस्लिमा भी इस वक्त अल्लाह की पकड़ में है, और दूसरों को तो क्या कहना। तो अपने ईमान की फिक्र करते हैं। एक आयत है इस रुकू में ईमान से मुतल्लिक, 96 आराफ, वलवन्नाहलकुरामनुवत्तकू। आप ना सिर्फ ये कि इसका नंबर नोट करें, बल्कि आप इस आयत को सामने रख, ईमान और तकवा रिस्क के दरवाजे खुलवाते हैं। मियाँ साहब की जॉब चली गई, काम कम हो गया, घर में पैसे की तंगी, इस आयत पे अमल कीजिए। क्या बढ़ाइए? तकवा बढ़ाइए। कोई मुश्किल, कोई अपनी बुरी आदत छोड़िए, कोई खराबी, कोई ऐसी चीज़ जिससे आप अपने आप को निकाल सकें उससे निकालें। तो क्या पता चला कि तकलीफ़ और मुश्किल इंसान को आजिज़ बनाने के लिए आती है, तोड़ता है अल्लाह। आप देखिए, पानी डलता है ना तो आटा पहले नरम होता है, फिर बाद में पकाते हैं चूल्हे पे। शुरू में अल्लाह बंदे के अंदर से अकड़ निकालता है, तकबुर निकालता है। तकवा के बगैर माल तो मिल सकता है लेकिन बरकत नहीं होती। और इंसान को मिलने वाली सज़ा अल्लाह ताला का जुल्म नहीं, बल्कि इसके अपने आमाल का नतीजा होता है। लिखिए एक जेम, लोगों का डर, लोगों का अल्लाह की पकड़ से बेखौफ होना दरअसल दिलों के मुर्दा होने का सबूत है। देखिए, आपकी स्किन है ना, ज़रा सा कट लगेगा तो दर्द होता है, लेकिन अगर कहीं से स्किन बेहिस हो जाए, कभी कभी ऐसा होता है कि पपड़ी सी आ जाती है, फिर आप उधर चुटकी भी काटें ना तो कुछ नहीं होता। जब तक बंदे को तकलीफ़ों के नतीजे में दर्द महसूस हो, समझ लीजिए कि दिल जिंदा है। और जब आपको तकलीफ़ें, आजमाइशें, बीमारियां, बच्चों की परेशानियां भी ना हिलाएं, तो समझ लीजिए कि दिल मुर्दा दिल नहीं, इसे जिंदा कर दोबारा। फेथ इन एक्शन के पॉइंट क्या हैं? कि आजमाइशों को अल्लाह ताला की रहमत समझना है, अल्लाह ताला की पकड़ से बेखौफ नहीं होना, अपने अंदर खशियत इलाही लानी है। अल्लाह आपकी मेरी मदद फरमाए। रुकू नंबर 13, 100 से 108, गुनाहों के नतीजे में दिलों पर कुफल लग जाता है। क्या एक एक टॉपिक इस बात का तकाजा नहीं करता कि एटलीस्ट 3 सेकंड तक हम रुक कर सोचें? 3 सेकंड देती हूँ, ज़रा सोचिए ये टॉपिक क्या आ रहा है, क्योंकि हम बस जल्दी में पढ़ते ही ना जाए। अवलम यह दिलसीना यह रिसून अलर दम्बाद यहलिहा। और क्या इन लोगों को जो ज़मीन के वारिस हुए, वहाँ के लोगों की हलाकत के बाद वो वाक़यात जो इनमें मज़कूर हैं, ये बात नहीं बतलाई कि अगर हम चाहें तो इनके जराइम के सबब इनको हलाक कर डालें और हम इनके दिलों पर मोहर लगा दें, बस वो ना सुन सके। नोट किया आपने? मोहर दिल पे लग रही है और सुनने से महरूम रह रहे हैं, क्योंकि जिस चीज़ में बंदे का दिल नहीं होता ना, वो नहीं सुनता। कई लोग हैं इस वक्त भी, उनके कानों तक मेरी आवाज़ टकरा रही होगी, लेकिन वो किसी और ही काम में मशगूल होंगे, किसी और ही गम में, किसी और ही मसले में, नजरें कहीं, आंखें कहीं, कान कहीं। तो याद रखिए, दिल के कानों से सुनेंगे तो फायदा होगा। इन बस्तियों के कुछ कुछ किस्से हम आपसे बयान कर रहे हैं, और इन सब के पास उनके पैगंबर मोजजात लेकर आए, फिर जिस चीज को उन्होंने इब्तदा में झूठा कह दिया, ये बात ना हुई कि फिर इसको मान लेते। ये भी इंसान की एक स्टबननेस है, शुरू में ना निकल जाए ना हानि करते। कुछ लोग बड़े ज़िद्दी होते हैं, बच्चे भी होते हैं लेकिन कुछ बड़े भी होते हैं, कह दिए तो नहीं तो नहीं। अल्लाह कहते हैं चूंकि इब्तिदा में नहीं माना ना, आप नहीं माने। ये अल्लाह की तरफ से ना एक चेक वॉल है। आपको देखा यहाँ पाकिस्तान इंडिया की बिजली में सर्किट ब्रेकर किसको कहते हैं? इवन यहाँ भी ऐसे ही है, जब आप बहुत ज़्यादा लोड डालते हैं ना तो एकदम पीछे से वो फ्यूज़ बंद हो जाता है ना, ये कैफियत है। जब फ्यूज़ उड़ जाता है ना तो फिर इंसान समझता है कि आज कोई गड़बड़ हुई है, नहीं मानते। और अल्लाह ताला इसी तरह काफिरों के दिलों पर बंद लगा देता है, फिर आखिर में पूरी बिजली बंद हो जाती है सारे घर की। और अक्सर लोगों में हमने वफाए अहद ना देखा, और हमने अक्सर लोगों को बेहुक्म ही पाया। पूछिए, मेरे अंदर अहद वफा है? आज इस बारे में अहद अलस्तार है, अल्लाह से किए हुए वादे को निभाती हूँ, नाफरमानियों का शौक तो नहीं है। अब यहाँ तक वो बातें करने के बाद मूसा का डायरेक्ट किस्सा, फिर इनके बाद हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अपने दलाइल देकर फिरौन और उसके उमरा की तरफ भेजा, मगर इन लोगों ने इनका बिल्कुल हक अदा न किया। सो देखिए इन मुफसिदों का क्या अंजाम हुआ। और मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिरौन, मैं रब्बुल आलमीन की तरफ से पैगंबर हूँ, क्या तारुफ कराया, पहले लंबे से कलाबे मिलाए, मैं अल्लामा, मैं फुला, मैं बड़ा, मैं वो किबला काबा, पता नहीं कितने कलाबे लगाते हैं लोग, खुद भी और दूसरे भी उनके नामों पे। सीधा साधा तारफ, मैं अल्लाह का भेजा हुआ, ये है एक दाई दीन का पैगाम। अब देखिए इसको जरा साज के हालात के साथ तसव्वुर की निगाह से देखते रहे, मूसा उस वक़्त के हक वाले हैं और फिरौन उस दौर की बातिल परस्त कुवत का नुमाइंदा। वो बड़ी ताकत खुद को कहता था, आगे हम पढ़ेंगे ना रब्बुकुम लाला, आज किसी सुपर पावर के सामने जाते हुए किसी मुसलमान लीडर और किसी बड़े का क्या रवैया होना चाहिए। इधर से देख लीजिए क्या फरमा रहे हैं, मेरे लिए यही शायान है, यानी इट लाइक्स इट सूट्स मी, यही मुझे जचता है कि सिवाय सच के अल्लाह की तरफ कोई बात मंसूब ना करूं। मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक बड़ी दलील भी लाया हूँ, बस तू बनी इसराइल को मेरे साथ भेज दे। इसको हाईलाइट कर लें, हर नबी का एक ही मकसद होता था भेजे जाने का, के लोगों को अल्लाह का पैगाम दे। मूसा अलैहि सलाम के दो मकासद थे, ये पहला सामने आ गया, कई सालों की गुलाम बनी बनी इसराइल को फिरौन के जुल्म से निजात दिलाना, तो टू दी पॉइंट बात करके पैगाम दे दिया। फिरौन ने कहा, अगर आप कोई मौजजा लेकर आए हैं तो इसको आप पेश कीजिए, अगर आप सच्चे हैं। बस आपने अपना असर डाल दिया, जो देखते ही देखते वो एक अजदहा बन गया कोबरा। ये था पहला मौजजा जिसको आप खौफ के साथ रिलेट कीजिए, और अपना हाथ बाहर निकाला, बस वो यकायक सब देखने वालों के रूबरू बहुत ही चमकता हुआ हो गया। यदे बैजा, ये उम्मीद थी, अलीमानु बैनल खौफी वरिजा। अमल का नुक्ता लिखना चाहें तो लिख लें कि तबलीग के अंदर ना तो लोगों को इतना डरा दें कि उनकी जान ही निकल जाए, और ना इतना बेखौफ कर दें कि वो मस्तियाँ करते रहे। अच्छा मुबल्लिग, आगे हमें मिलेगा मैसेज इंशाल्लाह, बहुत प्यारी आयतें आज आ रही हैं कि तबलीग करनी कैसे चाहिए। तुम्हारे सामने कौन बैठे हैं जरा उनको देखो, तुम तबलीग कर रहे हो उनको जो मासूम सी खवातीन है, और तुम सुना रहे हो उनको जो इस दुनिया पे जुल्म और सितम ढा रहे हैं, तो ये बेवकूफ़ी होगी। ईमान से मुतल्लिक एक आयत है इस रुकू में 101, हिदायत को झुठलाना दिलों पर मोहर लगवा देता है। 3 सेकेंड जरा जायजा लीजिए अपना, कभी मैंने किसी हिदायत की दावत को ठुकराया, किसी ने कहा आना सुनना मैं गई, किसी ने कहा ये कर लो मैंने किया, किसी ने दावत दी नमाज की मैंने रिजेक्ट कर दिया, झूठ बोल दिया कि मुझे पढ़नी ही नहीं है। हर एक अपने अंदर झांके, क्योंकि ये आयतें सिर्फ मूसा और फिरौन की नहीं है, ये आपके मेरे अंदर के हक और बातिल की जंग की भी है। और याद रखिए कि हम सब के अंदर भी एक जंग लगी हुई है और एक बाहर। हर इंसान, यहाँ लिख लीजिए आपको फायदा होगा, हर इंसान 4 महाजों पे एक वक्त में लड़ा जा रहा है, 2 दुश्मन, दोस्त अंदर है और 2 बाहर। अंदर शैतान और फरिश्ता, नफ्से अम्मारा और नफ्से लवामा, दोनों की जंग चल रही है। मेरे पास भी हर वक्त है, आपके पास भी है, नबियों के साथ भी होती थी। हाँ, अम्बिया कराम को अल्लाह ताला ने महफूज कर लिया था असमत अम्बिया की वजह से। इसी तरह बाहर की दुनिया में भी कुछ लोग हक की जंग लड़ रहे हैं और कुछ बातिल की, कुछ दीन को आम कर रहे हैं तो कुछ बेदीनी को आम कर रहे हैं, कुछ गुनाहों की दावत दे रहे हैं तो कुछ नेकियों की दावत देते हैं। ये चारों फैक्टर्स हर बंदे के ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। बाहर की दुनिया में अगर आपका हक वालों के साथ उठना बैठना होगा, जैसे आप कुरान सुनते हैं ये हक है, आप मस्जिद में आकर नमाज आपके मियाँ पढ़ते हैं ये हक है, आपके हस्बैंड की बहुत अच्छी सोहबत है, उनके अच्छे अच्छे दोस्त हैं, ये हक है। जो बंदा बाहर जिन लोगों में उठता बैठता है ना, अंदर का उसका मामला उसी तरह होने लगता है। फिर नफ्से लवामा स्ट्रांग होता है, फिर फरिश्ता उससे खुश होता है, शैतान उससे नाराज़ होता है। जैसे एक वक्त आता है कि हक पे चलने वाले को बहुत सारे दोस्त छोड़ देते हैं, तो एक वक्त आता है कि शैतान भी आपको कहता है जाओ तुमने नहीं मेरे हाथ आना, फिर वो आपको और किसी और एंगल से लाएगा। तो क्या पता चला कि ये जो आपके मेरे अंदर हर वक्त के मसाइल है ना, आप इसको ज़रा सा अपनी ज़िंदगी के किसी एक मामले पर सोचें, मेरा यकीन है कि हम सब कभी ना कभी ज़रूर आजमाए गए, कभी जान से, कभी माल से, कभी औलाद से, कभी सेहत से। पूछिए खुद से, मेरी वो आजमाइश तादीबन थी या ताजीबन? ये जुमला लिख लीजिए आप, शुरू में आजमाइशें तादीबन आती हैं अदब सिखाने के लिए, ना समझें तो वो ताजीबन यानी फिर अजाब बन जाता है। तो आप और मैं, अच्छा है कि छोटी सी आजमाइश में ही अल्लाह को पालें, ना कि फिर अल्लाह हमें बड़ी आजमाइशों में डाले। फेथ इन एक्शन, कुरानी किस्सों से तफरीह नहीं, इबरत लेनी है। आज दुनिया में लोग किस्से, ड्रामे, फिल्में, गाने क्यों सुनते हैं तफरीहन? कुरान आपको इबरत के लिए सिखाता है ये चीज़ें। सच्चाई का नुमाइंदा बनना, ये है हक। अल्लाह आपको, मुझे, हमारी नस्लों को, हमारे शोहरों को, भाइयों को, भांजों, भतीजों, सबको हक के नुमाइंदे बना दें। जहाँ रहें हक का बोलबाला करें, सच्चाई का झंडा पकड़ने वाले बने। फिरौन जैसे लोगों के सामने भी हक की आवाज़ बुलंद करनी है। बोलिए
इंशाल्लाह।
इंशाल्लाह।